लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए याचना करते हैं, ताकि कलीसिया हर स्तर पर श्रवण और संवाद को अपनी जीवन शैली के रूप में अपना सके और स्वतः को विश्व की परिधियों की ओर पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होने दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, मरियम सुसमाचार प्रचार की माता का जिक्र करते हुए हम आज संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम का समापन करेंगे। मरियम एक गौशाले को यीशु के घर के रूप में बदलने के योग्य होती है, जहां हम गरीबों के कपड़े को लपेटता और अथाह प्रेम को पाते हैं। वह पिता ईश्वर की सेविका है जो उनके महिमा का गुण गान करती हैं। वे मित्र की भांति हैं जो इस बात की चिंता करती हैं कि हमारे जीवन में अंगूरी की कमी ना हो। वे वह नारी हैं जिनका हृदय एक भाले से बेधित किया गया, जो हमारी सारी दुख तकलीफों को समझती हैं। सबों की माता के रूप में वे उन लोगों के लिए आशा की निशानी हैं जो अपने को न्याय के प्रसव पीड़ा में दुखित पाते हैं। वे प्रेरित हैं जो हमारी निकट रहती और सदैव हमारे साथ चलती हैं। वे अपने ममतामयी प्रेम से हमारे हृदय को विश्वास के लिए खोलती हैं। एक सच्ची माता के रूप में वे हमारी बगल में चलती हैं, हमारे संघर्ष में हमारे साथ रहती और हमें ईश्वर के प्रेम से ढकी रहती हैं। हम उनके विभिन्न नामों में तीर्थ स्थलों को पाते हैं। मरियम हर व्यक्ति के जीवन इतिहास में अपने को सम्मिलित करती, जहां हम सुसमाचार को पाते हैं। इस भांति वह हमारे जीवन की एक ऐतिहासिक पहचान बनती हैं। बहुत से ख्रिस्तीय अभिभावक अपने संतानों को मरियम के तीर्थ स्थलों में बपतिस्मा देने की चाह रखते हैं, जो मरियम के मातृत्व में उनके विश्वास को व्यक्त करता है, जो उन्हें ईश्वर की नई संतान होने में मदद करता है। वहां उन तीर्थ स्थलों में हम यह देखते हैं कि कैसे मरियम अपनी संतानों को अपने दर्शन हेतु तीर्थ यात्रियों की भांति एक साथ संग्रहित करती, जो उनके द्वारा देखे जाने की चाह रखते हैं। ऐसा होने के द्वारा वे अपने जीवन में ईश्वर की ओर से अपनी चिंताओं और तकलीफों को वहन करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे कि उन्होंने जुवान दियेगो के साथ किया। मरियम उन्हें अपनी सांत्वना और प्रेम प्रदान करते हुए उनके कानों में फुसफुसाती हैं, तुम्हारा हृदय विचलित ना हो, क्या मैं यहाँ तुम्हारी माँ नहीं हूँ। श्रोताओं, हम सुसमाचार की सजीव माता से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे लिए निवेदन करें, जिससे सुसमाचार प्रचार के एक नए चरण का निमंत्रण सारी कलीसिया के द्वारा स्वीकार्य हो। मरियम विश्वास की नारी है, वह उसे जीती और उस विश्वास में बढ़ती हैं, और विश्वास का उनका असाधारण तीर्थ कलीसिया के लिए सदैव संदर्भ का एक बिंदु बनता है। मरियम ने विश्वास की अपनी यात्रा में अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित होने दिया, जो सेवा के जीवन द्वारा फलित हुआ। आज हम उनकी ओर देखते और मुक्ति के संदेश को सबों के लिए घोषित करने में सहायता की मांग करते और नए शिष्यों को सुसमाचार प्रचारक बनाने का आह्वान करते हैं। सुसमाचार प्रचार की इस यात्रा में हम सूखेपन, अंधेरे और यहाँ तक कि थकान का अनुभव करेंगे। मरियम ने स्वयं इन सारी चीजों का अनुभव यीशु के बचपन के सालों में नाजरेथ में किया। यह सुसमाचार की शुरुआत है, खुशी का सुसमाचार। यद्यपि उस शुरुआत में हमारे लिए हृदय के भारीपन को देखना कठिन नहीं होता है, जो एक तरह से विश्वास के अंधेरे से संयुक्त है। क्रूस के संत योहन के शब्दों में यह एक तरह का पर्दा है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को अदृश्य ईश्वर के निकट आने की जरूरत है और उनके संग उनके रहस्य में निकट रहना है। यह सालों तक मरियम का मार्ग था, जहां उन्होंने अपने पुत्र के संग उनके रहस्य में निकटता का जीवन व्यतीत करते हुए अपने विश्वास तीर्थ में आगे बढ़ी। श्रोताओं, कलीसिया के सुसमाचार प्रचार कार्य में हम मरियम की शैली को पाते हैं। जब कभी हम मरियम को देखते हैं, तो हम पुनः प्रेम और करुणा के क्रांतिकारी स्वभाव पर विश्वास करते हैं। हम उनमें नम्रता और कोमलता के गुणों को कमजोरों के गुणों स्वरूप नहीं, बल्कि शक्तिशालियों के गुणों के रूप में देखते, जो दूसरों के साथ खराब व्यवहार नहीं करते, जिससे वे अपने में महत्वपूर्ण अनुभव कर सकें। मरियम के जीवन पर चिंतन करते हुए हम इस बात को देखते हैं कि वह शक्तिशालियों को उनके आसनों से नीचे लाने और धनियों को खाली हाथ भेजने के लिए ईश्वर का महिमा गान करती हैं। यह वह भी हैं जो न्याय की हमारी खोज को पूरा करती हैं। वह वे भी हैं जो इन सारी बातों को अपने हृदय की गहराई में रखती और उन पर विचार मंथन करती हैं। मरियम सभी छोटी बड़ी घटनाओं में ईश्वर की योजना को पहचान पाने के योग्य होती हैं। वे दुनिया में मानव इतिहास और हमारे रोज दिन के जीवन में ईश वचन के रहस्य पर सदैव चिंतन करती हैं। वह नाजरेथ की नारी हैं, जो प्रार्थना और कार्य करती हैं। वे हमारी सहायिका हैं, जो अतिशीघ्र दूसरों की सेवा हेतु अपने घर से निकल पड़ती हैं। न्याय और करुणा दूसरों के लिए चिंता के बीच संबंध में हम मरियम को सुसमाचार के आदर्श स्वरूप पाते हैं, जिनकी ओर कलीसियाई समुदाय अपनी निगाहें फेरती हैं। हम उनसे ममतामयी निवेदन करते हैं कि कलीसिया दूसरों के लिए एक निवास बने, सबों की एक माता हो और एक नई दुनिया के जन्म हेतु एक मार्ग खुल सके। यह पुनर्जीवित येसु हैं, जो हमें शक्ति, विश्वास और अक्षीण होने वाले आशा से भरते और कहते हैं, देखो मैं सारी चीजों को नया बना देता हूँ। मरियम के साथ हम विश्वास से भरे प्रतिज्ञा पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और उनके संग विनती करते हैं।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सिनोडल यात्रा का मूल तत्व उस बुनियादी सच्चाई में पाया जाता है किसका उद्देश्य सुनना, समझना और ईश्वर की इच्छा को व्यवहार में लागू करना है। यह बात संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को वैटिकन में धम्मदक्ष धम्म सभा शुरू होने के पहले कही है, जिसको 3 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाशित किया गया है। विदितों की कलीसिया में सिनोडालिटी या संगठनात्मकता पर 16वीं धम्म सभा 4 अक्टूबर को शुरू हो रही है, जिसके पूर्व सिनोड प्रतिभागी 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना में भाग ले रहे हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठे विभाग ने संदेह या सवालों पर संत पापा फ्रांसिस के जवाब को प्रकाशित किया है, जिसको 5 कार्डिनलों ने प्रस्तुत किया था। सवाल दिव्य प्रकाशना की व्याख्या, समलैंगिक जोड़ों को शादी आशीष दिए जाने, कलीसिया के एक संवैधानिक आयाम के रूप में धम्म सभा, महिलाओं के पुरोहिताभिषेक और पाप स्वीकार संस्कार में पश्चाताप एक आवश्यक शर्त से संबंधित है। सवाल इटालियन में था, जिसका उत्तर संत पापा ने स्पानी भाषा में दिया है, जिसको सोमवार को विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। संत पापा ने अपने जवाब में कहा है, हालांकि मेरा मानना है कि सीधे तौर पर मुझसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं होता और उन सभी का उत्तर देना असंभव होगा। इस मामले में धम्म सभा की निकटता को देखते हुए मैंने ऐसा करना उचित समझा है। सवाल इस दावे के संबंध में है कि ईश्वरीय प्रकाशना की वर्तमान सांस्कृतिक और मानव शास्त्रीय परिवर्तनों के आधार पर पुनः व्याख्या की जानी चाहिए। कुछ धर्माध्यक्षों के बयानों के बाद जिन्हें ना तो सही किया गया और ना ही वापस लिया गया, हम पूछते हैं कि क्या हमारे समय के सांस्कृतिक परिवर्तनों और इन परिवर्तनों से मिले नई मानव शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार कलीसिया में ईश्वरीय प्रकाशना की पुनः व्याख्या की जानी चाहिए, अथवा इसके विपरीत ईश्वरीय प्रकाशना हमेशा के लिए बंधनकारी और अपरिवर्तनीय है और इसलिए द्वितीय वैटिकन महासभा के आदेश अनुसार इसका खंडन नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि विश्वास की आज्ञाकारिता प्रकाशना करने वाले ईश्वर को दी जानी चाहिए, कि सभी राष्ट्रों के उद्धार के लिए जो प्रकट किया गया है उससे हमेशा के लिए संपूर्ण और जीवित रहना चाहिए और सभी पीढ़ियों को सौंप दिया जाना चाहिए। और समझ में प्रगति का मतलब चीजों और शब्दों की सच्चाई में बदलाव नहीं है, क्योंकि विश्वास एक बार और सभी के लिए सौंपा गया है और कलीसिया की धर्म शिक्षा ईश वचन से ऊपर नहीं है, बल्कि सिर्फ वही सिखाती है जो उसे हस्तांतरित की गई है। पहले सवाल का जवाब देते हुए संत पापा ने कहा है, जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप पुनः व्याख्या शब्द को क्या अर्थ देते हैं। यदि इससे बेहतर व्याख्या के रूप में समझा जाता है तो अभिव्यक्ति मान्य है। इस अर्थ में द्वितीय वैटिकन महासभा ने पुष्टि की है कि यह आवश्यक है कि व्याख्याताओं के काम से और मैं इस शास्त्र को नहीं छोड़ूंगा, कलीसिया का निर्णय परिपक्व हो सकता है। इसलिए जबकि यह सच है कि ईश्वरीय प्रकाशना अपरिवर्तनीय है और हमेशा बाध्यकारी है, कलीसिया को विनम्र होना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि वह कभी भी अपनी अर्थात समृद्धि को समाप्त नहीं करती और उसे अपनी समझ में बढ़ने की जरूरत है। नतीस्तन वह अपनी धर्म शिक्षा में खुद की पुष्टि की गई बातों की समझ में भी परिपक्व हो गई है। इतिहास में सांस्कृतिक परिवर्तन और नई चुनौतियां प्रकाशना को संशोधित नहीं करती हैं, लेकिन हमें इसकी प्रचुर समृद्धि के कुछ पहलुओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह अपरिहार्य है कि इससे धर्म शिक्षा के कुछ पिछले बयानों की बेहतर अभिव्यक्ति हो सके और वास्तव में पूरे इतिहास में यही स्थिति रही है। संत पापा ने आगे कहा है कि एक और यह सच है कि धर्म शिक्षा ईश्वर के वचन से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि धर्म ग्रंथ एवं परंपरा की गवाही दोनों को सांस्कृतिक परिवर्तन से उनके चिरस्थायी तत्व को अलग करने के लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है। रांची के ससम्मान सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तेलेस्फोर पिटोपो की तबियत अचानक बिगड़ जाने की खबर मिली है, जिन्हें इस वक्त मांडर के कॉन्स्टेंट लेबन्स अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस ने उनके लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है। रांची के सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस ने मंगलवार को कार्डिनल तेलेस्फोर पिटोपो के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा, भारी और दर्द भरे दिल के साथ हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ससम्मान सेवानिवृत्त कार्डिनल तेलेस्फोर पिटोपो का स्वास्थ्य, जो पिछले कुछ समय से कॉन्स्टेंट लेबन्स अस्पताल में बिस्तर पर हैं, आज दोपहर लगभग 3 बजे अचानक बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत आईसीयू लिया गया। फेफड़ों में पानी भर जाने से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। डॉक्टरों ने फेफड़ों से पानी निकालने के लिए उनके फेफड़े में एक ट्यूब डालने की सलाह दी है। सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यूआईएससी ने अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के लिए इटली के राष्ट्रीय स्मरण दिवस को मनाने के लिए अप्रवासन नीति सिफारिशों की एक सूची जारी की है। यूआईएससी के अप्रवासी एवं शरणार्थी नेटवर्क की संयोजिका कार्मेलाइट सिस्टर एलिसा बंदेओ ने कहा, हम उन लोगों को अपना पीठ नहीं दिखा सकते जो प्रतिष्ठा और आशा की खोज में अपना जीवन जोखिम में डालते हैं। प्रवासन विषय पर नीतिगत सिफारिशों की एक सूची जारी किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे, जिसे यूआईएससी ने 3 अक्टूबर को अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के लिए इटली के राष्ट्रीय स्मरण दिवस पर प्रकाशित किया। उन्होंने कहा, आज विकास के लिए एक समग्र, एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण, स्थानीय अनुभव को सुसंगतता और जवाबदेही के साथ वैश्विक निर्णय लेने से जोड़ना पहले से कहीं अधिक जरूरी है। सिस्टर बंदेओ ने कहा, यूआईएससी का मानना है कि सभी अप्रवासियों एवं शरणार्थियों को सहायता प्रदान करना, उनके अधिकारों के पूर्ण सम्मान की गारंटी देना और मेजबान समुदायों के भीतर उनके एकीकरण की सुविधा प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। उन्होंने यूरोपीय संघ में सभी अप्रवासियों के लिए नैतिक उपायों और निष्पक्ष, समान और कानूनी पहुंच का भी आह्वान किया। मेडिसिन में इस साल नोबेल पुरस्कार उन वैज्ञानिकों की एक जोड़ी को दिया गया है जिन्होंने वह तकनीक विकसित की जिससे mRNA कोविड टीके तैयार हुए। इनमें से एक हंगेरियन महिला भी शामिल है। हंगरी में जन्मे वैज्ञानिक कैटरीन कारिको और अमेरिकी सहयोगी ड्रू विस्मैन के लिए यह एक लंबी यात्रा रही। उन्होंने mRNA अणु की खोज की जिसने कोविड-19 टीकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पुरस्कार की घोषणा सोमवार को स्वीडिश पुरस्कार देने वाले संस्थान ने की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।